शेर की दुनिया।
मित्रों, कार्यक्रम शेर की दुनिया की एक निकड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं हसन अब्बास और जहरा जैदी का सलाम स्वीकार करें। आज के कार्यक्रम में भी फिरदौसी की महान कलाकृति शाहनामे पर चर्चा जारी रहेगी।
शाहनामा मूल रूप से चार मुख्य भागों और एक आंशिक भाग पर आधारित है। पौराणिक भाग, पौराणिक शूरवीरता का भाग, पहलवानी का भाग, इतिहास का भाग और अलग कहानियों का भाग, जो इस किताब का आंशिक भाग समझा जाता है। ये कहानियां जो विदित रूप से फिरदौसी की अपनी पसंद पर चुनी गई हैं, पौराणिक भाग के अलावा शाहनामे के सभी हिस्सों में दिखाई देती हैं। इतने अधिक विविधतापूर्ण भागों वाले इतने बड़े काव्य संकलन में फिरदौसी ने ऐतिहासिक जुड़ाव को यथासंभव सुरक्षित रखा है। शाहनामे का विषय ईरानी राष्ट्र के इतिहास का सविस्तार वर्णन है और इसमें पौराणिक, पहलवानी और ऐतिहासिक घटनाएं शामिल हैं।
शाहनामे की कहानियों पर गौर करने से पता चलता है कि इस किताब में विजय या पराजय व दुर्भाग्य स्पष्ट व गुप्त कारणों व कारकों से अलग नहीं है। शासकों व पहलवानों का अंजाम प्रायः उनकी व्यक्तिगत अच्छाई व बुराई, सौभाग्य व दुर्भाग्य और सच व झूठ का परिणाम होता है। फिरदौसी की इस महान काव्य रचना में नैतिक व्यवस्था पूरी तरह से स्पष्ट व निर्धारित है। ऐसे अवसरों पर जब शाहनामे के स्रोत इस महान कवि को इस नैतिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने की अनुमति नहीं देते, फिरदौसी अपने प्रभावी स्वर के साथ पाठक और श्रोता का ध्यान उनके खोखलेपन की ओर आकर्षित करते हैं। फिरदौसी का दर्शन और उनकी तत्वदर्शिता मुख्य रूप से भलाई और बुराई के बीच संघर्ष पर आधारित है। कुछ समीक्षकों का कहना है कि ये दर्शन ईश्वर की सही पहचान की ओर फिरदौसी के ध्यान का प्रमाण है। निश्चित रूप से सृष्टि और संसार के मामलों के बारे में फिरदौसी की गहरी दृष्टि ईश्वर की सही पहचान के व्यापक अर्थ से असंबंधित नहीं है।
हम ये बात बहुत से बड़े शायरों के यहाँ देखते हैं कि वो शायरी करते समय आध्यात्मिक आयामों का बड़ा ध्यान रखते हैं। अलबत्ता अध्यात्म और धर्म के बारे में उनके सोचने का अंदाज अलग होता है। शायद यही बात अल्लामा इकबाल ने अपने अंदाज में कही है कि क्या सूफियों मुल्ला को खबर मेरे जुनू की, उनका सर दामन भी अभी चाक नहीं है।
मेरे विचार में ये शेर कुछ कठिन है, अगर आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, थोड़ा इसको सरल बनाएं तो बेहतर होगा।
भाई, अल्लामा इकबाल कहना चाह रहे हैं कि सूफी और मुल्ला जैसे लोग जो अपने आप को खुदा से बहुत करीब और उसका सच्चा आशिक कहते हैं, वो सिर्फ ढोंग करते हैं, जबकि जो सच्चा मुसलमान होता है वो खुदा से ऐसा इश्क करता है कि उसके प्यार में दीवाना हो जाता है। इकबाल ने जिस दीवानगी का नाम लिया है ना, वो खुदा से सच्चे इश्क में ही हासिल होती है
जी।
वो कहते हैं कि दीवानगी का पहला कदम ये होता है कि इंसान होश में होता है लेकिन अपना गरीबान फाड़ लेता है, और खुदा से इश्क का आखिरी चरण ये होता है कि उसे चाहने वालों को उसके अलावा कोई भी दिखाई नहीं देता।
बिल्कुल,
हसन अब्बास साहब, इकबाल कहते हैं कि ये सूफी और मुल्ला जो इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, उनके गरीबान तो क्या उनके कपड़ों के निचले हिस्से भी फटे नहीं हैं, जबकि हम दीवानगी के आखिरी चरण पर पहुंचे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि सूफी और मुल्ला सिर्फ जबानी दावे करते हैं और कर्म के मामले में वो बिल्कुल कोरे होते हैं। इकबाल की शायरी में दो बातें बहुत खास हैं, इश्क और अक्ल। इकबाल का कहना है कि अक्ल राज को समझकर उसे महसूस करती है, जबकि इश्क उसे आंखों से देखता है। यानी इश्क सच्चाई सीधे सीधे और बगैर किसी वास्ते के देखता है।
बिल्कुल,
अक्ल वक्त और जगह में सीमित होती है, जबकि इश्क उन दोनों की सीमा से निकल कर उस असीम दुनिया में पहुंच जाता है जहां उसे हकीकत बगैर किसी रुकावट के और बिल्कुल बेपर्दा नजर आती है
जी।
इस शेर में सूफी और मुल्ला अक्ल के प्रति निधि माने गए हैं, जबकि दीवाना इश्क का प्रतिनिधित्व करता है
जी। बिल्कुल सही आपने इस शेर की तशरीह की। अध्ययनकर्ताओं और समीक्षकों ने फिरदौसी के शाहनामे को फारसी भाषा के बाकी रहने का मंत्र बताया है। शाहनामा न केवल ईरान व ईरानी राष्ट्र की प्राचीन विरासत है, बल्कि फारसी भाषा के मूल्य व महानता का प्रमाण और ईरानी संस्कृति व सभ्यता के वैभव का गवाह भी है। फिरदौसी ने उस समय शाहनामे की रचना की जब ईरान खलीफाओं के अधीन था। समाज के उच्च वर्ग की औपचारिक साहित्यिक भाषा अरबी थी। सरकारी और दफ्तरी पत्राचार अरबी भाषा में होता था और ज्ञान की गूढ़ किताबें भी अधिकतर अरबी भाषा में लिखी जाती थीं। फिरदौसी ने इतनी बड़ी किताब लिखकर विभिन्न प्रकार के विषयों को बयान करने में फारसी भाषा की क्षमता को स्पष्ट कर दिया और इस भाषा के स्तंभों को मजबूत बना दिया। उन्होंने अपनी इस किताब के माध्यम से शाहनामे की भाषा को 1000 साल तक फारसी भाषा का मानदंड बना दिया।
शायरी को किसी भी भाषा और साहित्य के उत्थान का मजबूत स्तंभ माना जाता है। शायरी भाषा को खास ऊंचाई पर ले जाती है। मीरा अनीस अपनी शायरी की खासियत इस तरह बयान करते हैं
जी।
नवा के खौने तकल्लुम है फसाहत मेरी, नातिके बंद हैं सुन सुन के बलागत मेरी, रंग उड़ते हैं वो रंगी है इबारत मेरी, शोर जिसका है वो दरिया है तबीयत मेरी, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, पांचवी पुश्त है शब्बीर की मद्दाही। और इसी मरसी का एक और बंद है, कलम फिक्र से खींचूं जो किसी बज्म का रंग, शमे तस्वीर पे गिरने लगे आ आ के पतंग, साफ हैरत ज़दा मानी हो तो बहजाद हो दंग, खून बरसता नजर आए जो दिखाऊं सफ़े जंग, रज़्म ऐसी हो कि दिल सबके फड़क जाएं, अभी बिजलियां तेगों की आंखों में चमक जाएं अभी।
सुभान अल्लाह।
और आइए मीरा अनीस के पर नाती गौहर लखनवी से इस मरसिए के कुछ बंद सुनते चलें।
नमके खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, अरे नातिके बंद हैं सुन सुन के बलागत मेरी, रंग उड़ते हैं वो रंगी है इबारत मेरी, और शोर जिसका है वो दरिया है तबीयत मेरी, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, अरे पांचवी पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में, एक कतरे को जो दूं बस तो कुलजुम कर दूं, बहरे मवाज फसाहत का तला तुम कर दूं, माह को मेहर करूं जर्रों को अंजुम कर दूं, गुंग को माहिर अंदाज तकल्लुम कर दूं, दर्द सर होता है बेरंग न फरियाद करें, अरे बुलबुलें मुझसे गुलिस्तां का सबक याद करें, मुब्तदी हूँ मुझे तौकीर अता कर या रब, शौक मद्दाही शब्बीर अता कर या रब, वो संग हो मोम वो तकरीर अता कर या रब, और नज्म में रोने की तासीर अता कर या रब, और जद्दो आबा के सिवा और की तकलीद न हो, अरे लफ्ज मुगलक न हो गुंजलक न हो ताकीद न हो, वो मुरक्का हो कि देखें उसे गर अहले शऊर, हर वरक में कहीं साया नजर आए कहीं नूर, गुल हो ये है कशिशे मुँह कलमे तुर्रे हूर, साफ हर रंग से हो कुदरत साने का ज़हूर, कोई नाजिर जो ये नायाब नज़ीरें समझे, और नक्श अरसंग को कावाक लकीरें समझे।
एक हज़ार साल के दौरान आने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों के बावजूद आज की फारसी भाषा फिरदौसी की ही जबान व भाषा का क्रम है, और अनपढ़ ईरानी भी शाहनामे की जबान को अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो इसे फिरदौसी के विचारों का चमत्कार ही कहा जाएगा। यूरोप के अधिकतर राष्ट्र 200 साल पहले की अपनी साहित्यिक किताबों की भाषा को सरलता से नहीं समझ पाते और कभी कभी इसमें उन्हें बहुत कठिनाई भी होती है, लेकिन फिरदौसी और शाहनामे की भाषा को आज के ईरानी अपनी आज की भाषा समझते हैं। ये भाषा समृद्ध व प्रकाशमान मानवीय संस्कृति की स्वामी है।
1000 साल बीत जाने के बाद भी आज सभी ईरानी शाहनामे को अच्छी तरह समझ लेते हैं। इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि फिरदौसी ने अपनी काव्य रचना को अपने काल की अत्यंत सरल भाषा में लिखा है। ईरान के समकालीन साहित्यकार उस्ताद फरूजान फर कहते हैं कि गर्शस्पनामे के मुकाबले में शाहनामे के पाठक को शब्दकोश उठाना कम ही पड़ता है। दूसरा कारण यह कि 1000 साल के दौरान ईरानियों ने निरंतर शाहनामे को पढ़ा है और उसकी बातें, उसके शब्द और उसके शेर उनकी जबानों पर हैं, और यही कारण है कि ये नश्वरता के खतरे से सुरक्षित रहा है। यह ऐसी स्थिति में है कि पिछले 100 साल के दौरान लिखी गई कुछ कविताएं ऐसी हैं जिन्हें शब्दकोश का सहारा लिए बगैर समझा नहीं जा सकता। शाहनामे में फिरदौसी की अभिव्यक्ति की शैली अत्यंत सादा, स्पष्ट और सरल है। अधिकतर मामलों में उन्होंने बहुत संक्षेप में बात कही है और बात को साहित्यिक अलंकारों में उलझाने से बचे हैं।